ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सब सुन रहे थे। हम सबका मन यही चाहता है कि सिवाय एक बाबा के हमारे मन में कुछ भी ना हो। आज का तो मुरली का वरदान भी बहुत सुंदर था। एक से सर्व संबंध रखें तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाएं। जैसे कहती हैं, दिए की शिखा अगर हवा के झोंकों से सुरक्षित हो जाए तो एक रस जगमगाती है, रोशनी देती है। लेकिन अगर झोंके हिलाते रहें तो एक रस नहीं जग पाती है। तो हमारी एक रस याद के ऊपर भी कई तरह के झोंके आते हैं। बाबा से हमारा प्यार तो जिगरी है। दिन में हम बार बार बाबा को यही कहते हैं कि बाबा, हमारे तो केवल एक आप हैं, आपके सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं है। और हम ये भी कहते हैं कि बाबा, हमारा जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका है, आपके सिवाय और किसी का भी नहीं है। लेकिन बार बार बाबा के आगे ये बातें कहते भी और मन में केवल एक को लिए रहते भी, जैसे दिए को झोंके आते हैं, ऐसे मानव मन को भी कई तरह के झोंके आते हैं। तो वो कौन कौन से झोंके हैं और उनसे हम कैसे बचें ताकि परमात्मा पिता से हमारा प्यार, परमात्मा पिता की याद एक रस हो जाए। प्यारे बाबा जब पिछली बार आए तो बाबा ने बहुत छोटी मुरली चलाई थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। बाबा ने कहा, आपके पास जो भी बोझ है वो बाबा को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। तो देखने में आता है कि सबसे ज्यादा जो मन को व्यस्त कर लेने वाले, मन को बाबा से हटा देने वाले झोंके हैं वो हैं बातों के, बातों का बोझ। ऐसे तो आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं और मनुष्य लगभग सब बोझों से मुक्त है। हर चीज को पहिए लगे हुए हैं। सफर में जाता है तो अटैची को पहिए हैं, किचन में काम करता है तो ड्रॉवर को पहिए हैं, आजकल तो जूतों को भी पहिए हैं, ताकि मनुष्य को बोझ ना उठाना पड़े, हल्का रहे, निश्चिंत रहे, बस उंगली लगाए और चीज घूम जाए। तो विज्ञान तो आदमी को बोझों से मुक्त कर रहा है। और देखने में ये भी आता है कि आज के जमाने में लोगों को बोझ उठाने में शर्म भी आती है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो देखता है कोई नौकर मिल जाए, कोई साथी सहयोगी मिल जाए तो मेरा सामान उठा ले, मेरे को ना उठाना पड़े। पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल बोझ नहीं उठाना चाहते, आपने देखा होगा बच्चा जब कम पढ़ा होता है तो फिर भी घर के लोग कहें अमुक चीज ले आ बाजार से ले आएगा, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ गया, मैट्रिक पार कर ली, बीए कर गया, उसके बाद अगर कोई कह दे बेटा सिलेंडर ले आ या कंधे पे कोई बोरा बोरी रख के ले आ, तो बच्चा बिल्कुल तैयार नहीं होता, शर्म आती है, बोझ कैसे उठाऊं, कोई देख लेगा, मेरे दोस्त देख लेंगे, क्या होगा। अब ये वाला बोझ तो हम नहीं उठाना चाहते, लेकिन मन में कितना बोझ उठाए हुए हैं, मन कितना भारी रहता है। क्या हम मन को भी खाली रखते हैं? कोई हमें चीज पकड़ाए तो हम कहते नहीं भाई इतनी दूर मेरे से ये चीज नहीं चलेगी, लेकिन बातों को तो हम चलते चलते यूं ही पकड़ लेते हैं और पकड़ करके भर लेते हैं और बिना जरूरत उन्हें ढोते रहते हैं। तो मन तो एक ही है ना, जैसे कहते हैं किसी नगरी का राजा भी एक होता है, किसी कहानी का नायक भी एक होता है, इसी तरह से मन में बसने वाली चीज भी एक ही होती है। चाहे तो बातें बसेंगी और चाहे तो बाबा बसेगा। तो बाबा तब बसे जब मन खाली हो। लेकिन जहां बातें कुंडली मार के बैठ जाती हैं तो बाबा के लिए जगह ही नहीं बचती। कई बार हम देखते हैं कि किसी चीज का वजन बहुत कम है, मान लीजिए कोई 20 ग्राम की ही चीज है। अब 20 ग्राम वजन तो कुछ भी नहीं होता, और 20 ग्राम वजन उठाना किसी को मुश्किल भी नहीं लगता, लेकिन अगर उसी 20 ग्राम वजन को हाथ पे रखना पड़े, सुबह रखा और रखे रखे शाम हो गई, तो क्या होता है, हाथ तो अकड़ जाएगा, मुट्ठी में भी बंद रखना पड़े तो पसीना आ जाएगा, कहेंगे अरे 20 ग्राम ही वजन तो था, कौन सा पहाड़ था। लेकिन लंबे समय तक आप थोड़ी सी वजन को भी पकड़ के रखेंगे तो बोझ तो लगेगा, चट्टान की तरह से लगेगा, बंधन की तरह से लगेगा, बांध दिया किसी ने हाथ को। इसी तरह से बात तो छोटी सी ही होती है, लेकिन जब हम उस लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं तो वो भी क्या बन जाती है, एक बहुत भारी चट्टान बन जाती है। ऐसे लगता है सिर पे बड़ा सा वजन रखा हुआ है, माथा भारी हो रहा है। अरे बात तो छोटी सी है, छोटी सी तो है, लेकिन कितने दिन हो गए इसको अंदर घूमते हुए। इसलिए मन खाली चाहिए। बात आई और गई, और कहते हैं बात बड़ी समझदार होती है, वो ठहरना जानती नहीं है, वो तो आती और चली जाती है, फिर अगली बात आती है चली जाती है, क्योंकि ड्रामा ऐसी घटनाओं से बना है जो एक सेकंड में आती है और अगले सेकंड चली जाती है। समय तो बहता रहता है, ठहरता नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस गई हुई बात को पकड़ लेता है, ठहर जा। जैसे हम बहते पानी को रोक लेते हैं, पानी का स्वभाव बहना है, हमने उसको रोक लिया, खड़ा कर लिया, जैसे ही पानी को रोका खड़ा किया, उसको काई लग गई, कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। अगर हम उसे बहते रहने देते वो स्वच्छ रहता, तो अगर बात को चले जाने देते तो ठीक था, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया। जाने नहीं दिया तो क्या हुआ? उसी बात में गंदगी, सड़ान, बदबू, पता नहीं क्या क्या पैदा हो गया। इसलिए बात नहीं रुकती है, हम उसे रोकते और रोकने के बाद उसे बहुत बढ़िया जगह देते हैं बिठाने की, और बिठाने के बाद उसका श्रृंगार करते हैं। पहले छोटे छोटे हाथ थे, फिर लंबे लंबे हाथ लगाएंगे, पहले छोटे छोटे पांव थे, फिर लंबे लंबे पांव लगाते हैं, और ऐसे करते करते उसको खूब बड़ा 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 बना लेते हैं। पहले दिन बात छोटी होती है, लेकिन जब व्यक्ति सोचता जाता है, वर्णन करता जाता है, तो उसका रूप विशाल बन जाता है। इसलिए बात आई और फुल स्टॉप लगाया। आई जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सेंटेंस पूरा हुआ और फुल स्टॉप, अगला सेंटेंस पूरा हुआ और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ना लगाएं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फुल स्टॉप ना लगाएं तो पता कैसे पड़ेगा? एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक बार एक सन्यासी एक किराने की दुकान पे गया और उसने दुकानदार को पूछा कि इस डब्बे में क्या है। तो दुकानदार ने बताया इसमें काली मिर्च है। बोला इससे आगे वाले में क्या है? बोला इसमें इलायची है। बोला इससे आगे वाले में क्या है? बोला इसमें हल्दी है। अच्छा इससे आगे वाले में क्या है? बोला राम राम। बोले ये क्या होता है? तो दुकानदार ने कहा ये डब्बा खाली है। तो जो खाली डब्बा होता है ना उसके लिए हम यही कहते हैं इसमें राम राम। तो सन्यासी को समझ में आया कि खाली होगा उसी में राम राम रहेगा, अब भरे हुए में तो राम राम रह ही नहीं सकता, इसलिए मैं भी अपने मन को खाली कर लूं ताकि राम राम रहे उसमें। तो बाबा की याद उस मन में रहेगी जो मन खाली होगा तनावों से, बातों से, पास्ट की बातों से, स्वभाव संस्कार की बातों से। आएंगी तो जरूर ये बातें, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम इसको लेट गो कर देंगे, अरे जाने दो ना। जैसे कई बार हम किसी को कोई बात सुनाते हैं, उसकी रुचि नहीं होती तो वो क्या कहता है, अरे छोड़ो ना, मेरे पास ये बातें सुनने का समय नहीं है। तो ऐसे ही हमारा मन भी कहेगा अरे जाने दो ना, मेरा इतना अमूल्य मन, भगवान को समर्पित मन, और वो इन छोटी छोटी बातों में यूं ही उलझाऊं मैं क्यों? ये मन केवल परमात्मा में समर्पित होने के लिए है। इस मन में केवल बाबा समाएगा और कोई नहीं समाएगा। मुझे मेरे मन की इतनी कदर है कि ये मन सोचेगा तो बाबा की बातें, समर्पित होगा तो बाबा पर, वर्णन करेगा तो बाबा का, चिंतन करेगा तो बाबा का, सुख लेगा तो बाबा का। मेरा मन बहुत महान है, ये साधारण बातों के लिए नहीं है, छोटी छोटी घटिया बातों के लिए नहीं है। तो जब हम बार बार अपने मन को देखते हैं कि तुम एक महान आत्मा के मन हो और तुम क्या कर रहे हो, इस बात को क्यों पकड़ के बैठे हो, तो इसको समझ में आता है और ये पावरफुल बन जाता है। एक शक्तिशाली मन ही इस तरह की व्यर्थ बातों से मुक्त रह सकता है। अगर मन कमजोर होगा तो बात बड़ी हो जाएगी, मन पर हावी हो जाएगी। मन को हम इतना शक्तिशाली बना करके रखेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा और बात छोटी हो जाएगी, बात को वो छोड़ देगा। और मन शक्तिशाली तब बनता है जब मन के विचारों को हम बार बार देखते हैं, अब क्या सोच रहा है, अब क्या सोच रहा है, अब किधर जा रहा है, ये बात क्यों सोची। जैसे जो बिल्ली होती है ना, वो चूहे को कैसे पकड़ती है? चूहे के बिल के बिल्कुल आगे बैठ जाती और एक टक देखती रहती, अभी बाहर निकला। इतना उसका ध्यान होता है, जैसे ही चूहा बाहर निकला वो बिल से इंच मात्र भी बाहर नहीं जा पाता, उससे पहले उसे पकड़ लेती है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद तो बहुत बड़ा फील्ड हो जाएगा और वो पता नहीं इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, बिल से निकलेगा तो वो तो छोटी सी जगह है, वहां पकड़ना सरल। तो विचारों को भी ऐसे ही पकड़ना होता है, बिल्ली की तरह से ध्यान लगा के अपने विचारों को देखूं, अब कौन सा विचार आया, देखूं ये मन किधर गया अभी। और जैसे ही विचार उठा उसको पकड़ा, तुम क्यों उठे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। और जब हम इस तरह से पकड़ते हैं तो विचार उठने ही बंद हो जाते हैं, उनको पता हम पकड़े जाएंगे। मन में जो छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती हैं ना, वो कई बार एक बहुत बड़े आवेग का रूप धारण कर लेती हैं, जिनको हम कहते हैं मानसिक आवेग, क्रोध का आवेग, लोभ का आवेग, ईर्ष्या का आवेग। आवेग माना फोर्स। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाती हैं कि एक बार वो अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दूर से एक आदमी चला आ रहा है, चलता आया और जैसे ही महात्मा बुद्ध के नजदीक पहुंचा उसने महात्मा बुद्ध की छाती पर थूक दिया। बुद्ध ने बड़े प्यार से उस आदमी को कहा, कहिए, और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, लेकिन आनंद को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा, भंते, इसने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन इसने जो व्यवहार किया वो कितना निकृष्ट है। आप कहें तो मैं इसे सजा दूं, लेकिन व्यक्ति तो अपना काम करके वापस दौड़ गया। और बुद्ध मुस्कुराते रहे और आनंद उलझ गया, ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बोला नहीं फिर भी कहते हैं बोलिए और मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अब करें क्या। बुद्ध ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो दोनों चुपचाप चलते रहे चलते रहे। अगला दिन सुबह आया और देखा कि वही आदमी फिर दौड़ा दौड़ा आ रहा, और जैसे ही वो आदमी नजदीक आया उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और आंखों से इतना पानी बहाया कि पांव धुल गए। इस समय भी महात्मा बुद्ध साक्षी होके देखते रहे और चरण धोकर के आंसुओं से वो फिर चला गया। अब तो आनंद का धैर्य खत्म हो गया। उसने कहा, भंते, ये क्या हो रहा है, ये आदमी कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो बुद्ध ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि देखो, कल इस आदमी के मन में घृणा का आवेग था। घृणा, एक होती है घृणा और एक होती है घृणा का आवेग। जो घृणा होती है उसको आदमी अपने शब्दों से प्रकट कर लेता है, लेकिन जब वो आवेग में बदल जाती है तो आवेगों को शब्दों से प्रकट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं होते जो उस आवेग को प्रकट कर सके। तो आदमी क्या करता है, एक्शन का सहारा लेता है, कर्म का सहारा लेता है अपने आवेग को प्रकट करने के लिए। तो इस आदमी ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि कोई भी धर्म स्थापक जब आता है तो शुरू में तो लोग उसका विरोध के रूप में ही उसका स्वागत करते हैं, उसका विरोध ही करते हैं। तो बुद्ध के बारे में लोगों से उसने बहुत कुछ सुना होगा, उसके मन में घृणा भर गई होगी, अपनी उस घृणा को प्रकट करने के लिए वो आया, लेकिन आवेग इतना ज्यादा था कि मुंह से बोलने के बजाय उसने एक्शन कर दिखाया कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। लेकिन जब अपना एक्शन प्रकट किया और बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और प्यार से कहा कि कहिए और क्या कहना है, तो उसकी नफरत धुल गई। ये आदमी तो बड़ा स्वीट है, कितना प्यार से मुस्कुरा करके और मेरे से बात कर रहा है, मैंने ऐसा काम किया। अब कर तो दिया काम, लेकिन करने के बाद पश्चाताप हुआ, वापस चला गया, रोता हुआ, सारी रात रोता रहा। अब उस पश्चाताप के आवेग से भर गया, जैसे तैसे सुबह हुई, उसे फिर ललक हुई मैं मिलूं, और उस आवेग को भी कैसे प्रकट करे, शब्द उसके लिए भी उसके पास नहीं। तो उसने उस आवेग को भी एक्शन से प्रकट किया, चरणों पे सिर रख दिया, आंसुओं से धो दिया। बुद्ध दोनों भाषाएं समझ गया, पहली वाली भाषा भी समझ गया, बाद वाली भी समझ गया। तो ये आवेग बने कैसे, जब एक बात को बार बार सोचा, बार बार सोचा, बार बार सोचा। कई बार हम अखबारों में समाचार सुनते हैं कि बात तो बहुत छोटी सी थी, जैसे थोड़े दिन पहले एक समाचार आया था, एक बहन ने, एक एयर होस्टेस थी, उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, दिल्ली की बात है। बात तो बहुत छोटी सी थी, रात को किसी पार्टी में गई थी तो 12 बजे घर लौटी, बाप ने कहा बेटा तुम बहुत देर से आई, मुझे तुम्हारा देर से आना पसंद नहीं। रात थी, छोटी सी बात खत्म हो गई। अगले दिन नाश्ते पे जब सारे इकट्ठे बैठे तो बाप ने दोबारा फिर कह दिया कि बेटा इतनी देर नहीं से नहीं आया कर, जल्दी घर आ जाया कर। बस इतनी बात सुनी और वो लड़की लटक गई। अब देखने में तो ऐसे ही लगता है ना कि क्या बाप की इतनी छोटी सी बात भी उससे सहन नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या होगा कि थोड़े दिन पहले कोई और घटना घटी होगी, उसमें बाप ने कुछ कह दिया होगा, उसने उस पर बहुत सोचा होगा, मुझे क्यों कहते हैं, क्यों टोकते हैं, क्यों बोलते हैं। फिर कोई घटना घटी होगी, फिर सोचा होगा क्यों बोलते हैं, क्यों टोकते हैं, फिर कोई घटना, और अब फिर ये घट गई। तो पिछले वाले आवेग तो भरे ही हुए थे और उसमें ये एक और ऐड हो गया। अब कभी तो बांध टूटेगा, कभी तो फटेगा, जरूरत से ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, तो वो फट गया। इसलिए किसी भी बात को अंदर रखना नहीं चाहिए, उस बात से मन को खाली कर लेना चाहिए। आजकल प्रकृति भी देखो बड़े बड़े कारनामे दिखाती है, एकदम सुनामी आ जाती है, एकदम कोई और तूफान आ जाता है, कहीं चिन्ह नहीं होता है। प्रकृति में भी आवेग भरे हुए हैं, मनुष्य ने जो पोल्यूशन फैला रखा है या मनुष्य के जो कर्म है, तो उनसे उसमें आवेग भरता जाता है और वो एक दिन फट पड़ता है। उस दिन लगता है अरे इतना बड़ा तूफान अचानक कैसे आ गया, इसकी तैयारी तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन एक दिन तो निश्चित है ही है उसके प्रकट होने का, तो उस दिन प्रकट हो जाता है। तो जो आवेग है वो बहुत नुकसान करते हैं, चाहे मनुष्य के हों चाहे प्रकृति के हों। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें युक्ति बताई कि मन को खाली करो, कई तरीके हैं उसके, कोई भी बात आती है बाबा को प्यार से लिखो। थोड़े दिन पहले एक मुरली आई थी, उसमें बाबा ने कहा था आगे बढ़ने का बहुत सरल तरीका है, जो भी बात मन में आती है वो बाबा को दे दो। तो कैसे दें? सुना दो। बाबा तो कहता है मैं सुनता हूँ, कानों वाले तो नहीं सुनते, लेकिन बिना कान वाला बाबा सबकी सुनता है। आंखों वाले जो चीज नहीं देखते, बिना आंखों के बाबा सब कुछ देखता है। तो बाबा को पत्र लिखो। जैसे ही पत्र में बात लिखेंगे बात उड़ जाएगी, आपको दोबारा याद नहीं आएगी कि ये बात हुई भी थी। पहले जमाने में तो क्या होता था कि परिवार इकट्ठे होते थे और घर के लोग जब आपस में मिलते थे, खाना इकट्ठे खाते थे या वैसे ही फ्री होकर के बैठते थे, तो एक दो के आगे मन की बात निकाल लेते थे। बच्चे स्कूल की बातें बता देते थे, आज ये हुआ, बड़े अपने काम धंधे की बात एक दो को सुना लेते थे, सब खाली हो जाते थे। अब आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ना तो इकट्ठे रहते हैं लोग, ना एक दो से मिलने जुलने की उन्हें फुर्सत है, तो क्या करें? मनुष्य तो मिलेगा नहीं मन को खाली करने वाला। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं हमेशा मौजूद हूँ, और जैसे ही बात से मन खाली होगा बाबा आ जाएगा सामने। देखने में आता है कि प्रकृति ने मनुष्य को शक्ति बहुत दी है, मनुष्य के पास कितनी ताकत है, शारीरिक ताकत कितनी है। एक आदमी के पास इतना शारीरिक बल है कि वो अपना काम करने के बाद दूसरों का काम भी कर सकता है। घंटे उसके पास 24, जितना समय उसे अपने लिए चाहिए उसे खर्च करने के बाद भी उसके पास काफी समय बच जाता है, जिस समय में वो परोपकार के बहुत सारे कार्य कर सकता है। पांव में इतनी ताकत है कि वो अपना वजन उठाने के बाद भी औरों का वजन उठा सकता है। अब प्रकृति ने ये इतनी ताकत उसे किस लिए दी? इसलिए दी कि इस ताकत को या तो वो परोपकार में लगाए या फिर परमात्मा के समीप जाने में इसका प्रयोग करे। लेकिन अगर वो इस शक्ति को यूज नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? मन में भारीपन और मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प। इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो अपना काम भी आपे नहीं करते, दूसरे लोग वो हैं जो अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें ज्यादा शक्ति की जरूरत है तो वो भी दूसरे का मुंह देखते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो हैं जो अपना काम निकालने के बाद भी अपनी शक्तियों को इतना बचा के रखते हैं कि अचानक अपने साथ कुछ अनहोनी घट जाए या दूसरों के लिए जरूरत पड़े तो शक्ति लगा सकते हैं। अब ये तीसरी तरह के लोग तो बहुत ही कम, पहली और दूसरी तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जो पहली और दूसरी तरह के लोग उनकी मानसिक समस्याएं बहुत, चिंता, उदासी, हताशा, रोना, रूठना, उत्तेजित होना, सहन नहीं करना, उतावलापन दिखाना, धैर्य नहीं रखना, बात को भूलना नहीं, बदले पे उतर आना, इस तरह की बहुत मानसिक समस्याएं हैं इन लोगों की। तो ये समस्याएं क्यों पैदा हुई? क्योंकि जो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जो योग्यता है, उस योग्यता को हमने प्रॉपरली यूज नहीं किया। जैसे हमारे पास एक बहन आती थी तो वो सुनाती थी कि ज्ञान में आने से पहले हमारे घर में रोज सुबह सुबह महाभारत मचता था। क्यों भाई? तो वो कहती थी मैं सुबह 7 बजे उठती थी, उठने के बाद फिर 2 बच्चों को स्कूल भेजना, खुद को स्कूल जाना, घर के सारे काम निपटाना, तो इन सब चीजों में जल्दबाजी करती थी। तुमने ये नहीं किया, तुम जल्दी उठो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो वो 7 से 8 बजे का जो 1 घंटा होता था उसमें जबरदस्त हलचल होती थी। उस हलचल के बीच में से ही हम हलचल वाले मन को लेके ही घर से बाहर निकलते थे, कुछ काम छूट भी जाते थे, कुछ बिगड़ भी जाते थे। अब हलचल वाले मन के साथ बाहर निकले तो बाहर की दुनिया तो और ज्यादा हलचल से भरी हुई है। समय पे बस नहीं आई, या बस में बैठे तो किसी यात्री ने जगह नहीं दी, या जब आगे गए तो जो निमित्त व्यक्ति है उसने कुछ कह दिया, या ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं मिला, कोई फाइल नहीं मिली, तो अब पहले ही सुबह सुबह मूड खराब था, ऊपर से सारा दिन ऐसी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं, तो आदमी को क्या तो खुशी रहेगी, क्या स्थिरता रहेगी, क्या जीवन में उमंग रहेगा? फिर क्या होता है? अगर किसी को सुखी देखते हैं ना तो गुस्सा आता है, ये सुखी क्यों है? अगर किसी को प्यार मिलता देखते हैं तो सोचते हैं इसको प्यार मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता? अगर किसी की कोई और प्राप्ति देखते हैं तो उसमें भी झुंझलाते हैं। अब इस तरह से सारा दिन चिंतन में, उत्तेजना में, भय में, व्यर्थ संकल्पों में इस तरह से बीतता है। अब देखो छोटी सी गलती कहाँ हुई, छोटी सी गलती ये हुई कि जो सुबह का समय था जिसका बहुत अच्छे से सदुपयोग किया जाना था, उस समय को हमने ऐसे गुजार दिया जैसे कोई बीमार आदमी बिस्तर पे पड़ा। देर तक कौन सोता है? बीमारी तो सोते हैं ना। अब परमात्मा से जो शक्ति ली जानी थी वो भी नहीं ली, प्रकृति भी सुबह सुबह बहुत ऊर्जा देती है, आदमी थोड़ा घूमे टहले, वो भी नहीं मिली, और जो अपनी थी वो भी सो करके गंवा दी। तो परिणाम क्या हुआ? आदमी खाली हो गया। अब जो खाली होगा वो काम कैसे निपटाएगा? उसको तो सुबह की दिनचर्या के काम करने भी मुश्किल लगेंगे, सोचेगा कोई आए ये भी करवा जाए, ये भी करवा जाए, अब करवाएगा कौन? बेचारा गिरता पड़ता झुंझलाता खुद ही करेगा। तो सारा दिन में हम अपनी कितनी सारी शक्ति को जो अपने लिए यूज होनी थी, दूसरों के लिए यूज होनी थी, उसको यूं ही गंवाते हैं। केवल एक सोकर के ही नहीं, लेकिन आलस्य में या बैठकर या व्यर्थ बातें करके या व्यर्थ की चीजें देख करके, व्यर्थ की चीजें सुन करके, इनमें भी तो शक्ति बाहर निकलती है ना। एक तरफ से शक्ति बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ से बातें ऐसी आती हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है, फिर झुंझलाती हैं, छोटी सी बात भारी कर देती है। तो अगर हम चाहते हैं कि मन शांत रहे, खुश रहे, हर परिस्थिति में उमंग में रहे, तो हमें अपनी शक्तियों को यूज करना है, उनका दुरुपयोग नहीं करना, उनको अनुपयोगी नहीं बनाना, लेकिन एक एक पल को सफल बनाना है, जमा करना है, देखना है मेरी किसी भी इंद्रिय की शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही है, मेरी बॉल की शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही है, सुनने की शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही है, सोचने की शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही है। घड़ी घड़ी देखना पड़ेगा, और जब हम घड़ी घड़ी इस तरह से चेकिंग करते हैं, अंकुश रखते हैं, तो शक्ति अंदर जमा होती है। और जैसे हम पहले कह रहे थे कि जितनी अंदर शक्ति जमा होगी उतना ये मन स्थिर रहेगा, हलचलों से बचेगा, और जितना स्थिर रहेगा उतना ये परमात्मा में एकाग्र होगा। तीन तरह की गोलियां होती हैं। एक तो खिलौने वाली गोली होती है, बच्चे वो गोली चलाते हैं तो कितनी दूर, एक फीट की दूरी पे गिर जाती है क्योंकि ताकत ही नहीं है, पिस्तौल भी नकली है, गोली भी नकली है। कुछ गोली ऐसी होती है जो यहाँ से आप चलाओ तो चलिए आधा किलोमीटर की दूरी तक चली गई, लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली पिस्तौल भी होते हैं, दो किलोमीटर तीन किलोमीटर दूरी पे जाके निशाने पे लग गए। अब ये जो मन है ये कितना शक्तिशाली है, ये इतना ही है कि थोड़ा सा ऊपर की ओर उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया, या इतना शक्तिशाली है कि सूक्ष्म वतन तक गया और फिर नीचे आ गया, या इतना शक्तिशाली है कि सीधा परम धाम गया, बीज रूप स्थिति में स्थित हुआ और उसी स्थिति में स्थित रहा। कितना शक्तिशाली है ये हमें देखना पड़ेगा। कई भाई बहन कहते हैं बीज रूप अवस्था बहुत प्रिय लगती है, मन करता है उसमें टीके, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं फिर फिसल के नीचे आ जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं वहां पे। टिकने के लिए मन बहुत शक्तिशाली चाहिए, नीचे की चीज उसे ना खींचे, कोई बात कोई वस्तु कोई व्यक्ति उसे खींचे नहीं। हम ऊपर जा रहे हैं और चीजें हमें नीचे खींच रही हैं, अगर खींचने वालों का फोर्स ज्यादा है तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारा फोर्स इतना ज्यादा है कि नीचे वाला कितना भी जोर लगाए लेकिन फिर भी हम ऊपर चले गए तो वो जोर लगाना भी बंद कर देते हैं, ऊपर गए भी और टिक भी गए। तो वो जो आनंद है, वो जो शक्ति मन में भरती है, उसके फलस्वरूप हमारे पुराने तो विकर्म विनाश होते ही हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है कि वर्तमान की कोई भी बात हमसे विकर्म नहीं करा पाती है। जैसे गोलियां तीन तरह की होती है ना, ऐसे ही हम देखते हैं सड़कों पे चलने वाले जो व्हीकल होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक व्हीकल है जो डीजल से चलते हैं, दूसरे व्हीकल है जो पेट्रोल से चलते हैं, और जो तीसरा है वो रिफाइंड पेट्रोल से चलता है। अब डीजल वाले तो हम जानते हैं आवाज भी ज्यादा करते हैं, धुआं भी छोड़ते हैं, स्पीड भी कम होती है। जो पेट्रोल वाले होते हैं उनकी स्पीड तेज होती है, धुआं नहीं होता इतना, और जो रिफाइंड पेट्रोल वाला है वो तो उड़ ही जाता है, उसकी तो स्पीड सबसे अधिक है। तो इसी तरह से हमारे मन को भी ईंधन की जरूरत है उड़ने के लिए, और हमारे जो संकल्प है उनकी क्वालिटी कैसी है, उस क्वालिटी के आधार पर इस मन की उड़ान है। अगर संकल्प डीजल की तरह से मिक्स वाले हैं तो इसकी उड़ान कैसी होगी, इसकी चाल कैसी होगी, चलेगा तो अवश्य लेकिन धीरे, और वो भी आवाज करते हुए, चिल्लाते हुए, शिकायतें करते हुए, असंतुष्टता के साथ। लेकिन अगर इस मन में भरे हुए संकल्प पेट्रोल की तरह से हैं तो स्पीड तेज होगी, और अगर वो संकल्प इतने रिफाइंड तो ये बहुत तेज गति से हवाई जहाज की गति से उड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ओवरकम करो, जैसे हवाई जहाज जाता है, बड़े बड़े पहाड़ भी आ जाते हैं लेकिन रुकता नहीं है क्योंकि ओवरकम करता है, ऊपर से निकल जाता है। सड़क पे चलने वाले को तो कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो अगर मन इतना शक्तिशाली है, उड़ान भरता है, तो बातें उसको रोकती नहीं है और वो अपनी मंजिल पे अपने ठिकाने पे पहुंच करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ता है। इसलिए हम अपने मन के विचारों को बार बार देखें, दूसरों को नहीं देखें, लेकिन अपने विचारों को बार बार देखें। कोई कमजोर विचार तो नहीं है, जैसे हम भोजन खाते हैं, आजकल हेल्थ के बारे में अब बहुत जागरूक हैं, जो भोजन करते हैं तो बार बार सोचते हैं ये चीज हेल्थ के अनुकूल नहीं है, ये अनुकूल है, ये ज्यादा खानी चाहिए, ये कम खानी चाहिए। इसी तरह से विचार मेरे मानसिक हेल्थ के अनुकूल है, अगर नहीं है तो मैं उसको फुल स्टॉप लगाऊं, कहीं ये मेरे हेल्थ को खराब ना कर दे। मान लीजिए हमारी थाली में कोई कंकर गिर जाए, खाना खाते समय कोई छिपकली गिर जाए, तुम ये थोड़े सोचते हैं कोई बात नहीं है निकल जाएगी, क्या करते हैं उसी समय थाली को फेंक देते हैं, इंतजार थोड़े करना होता। तो इसी तरह से कोई भी छोटा मोटा विचार जो कंकर की तरह से है, या कोई भी बड़ा विचार जो जहरीला है, इंतजार ना करें, उसे तुरंत निकालें। हमारी जो सारी उन्नति है, सारी प्राप्ति है, सारी अनुभूति है, हमारा जो सारा सुख है, वो हमारे मन की शुद्धता पे आधारित है। और मन सबसे सूक्ष्म है, और बाबा ने हमसे ये मन ही मांगा है, और कुछ मांगा भी तो नहीं। तो हम बाबा को कैसा मन देंगे? भगवान पे जब कोई चीज अर्पित की जाती है तो उसे बहुत प्यार से, बहुत सुंदर बना करके अर्पण किया जाता है। तो ये मन इतना सुंदर बनाए, इतना इसको उजला बना करके बाबा को समर्पित करें, जिसका मन जितना ज्यादा उजला वो उतना ही भगवान का अधिक प्यार पाता है, उतना ही अधिक समीपता का अनुभव करता है। इस अंतिम जन्म में हमारे पास और तो कुछ नहीं है, एक मन है, और उसको भी हम नहीं संभाल सके, भगवान की अमानत को नहीं संभाल सके, तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हम बैठ करके लिखें अभी क्या विचार चल रहे हैं, उन्हें दिशा दें, उन्हें बदले। सबसे अधिक मेहनत हमें अपने मन पर करनी है। और थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि जब अंतिम समय आएगा तो ऐसे दृश्य उपस्थित होंगे, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो कैसा दृश्य होता है, चीर फाड़ काट पाइट हो रही है, तो जैसे कमजोर मन वाले होते हैं तो वो तो उसको देख ही नहीं पाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब अंतिम समय आएगा तब ऐसे दृश्य बहुत होंगे, चारों तरफ ऐसे ही दृश्य होंगे, और उनके बीच में आपको बाबा को याद करना पड़ेगा, उनके बीच में आपको अपने मन को स्थिर और अप्रभावित रखना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस हमें आज करनी है। कोई भी नुकसान हो गया, कोई नियर एंड डियर चला गया, या किसी भी तरह की कोई और अनहोनी घटना हो गई, तो हम सोचें कि इतने शांति के समय में भी हम अपने मन को नहीं संभाल सके तो उस समय क्या होगा, जब चारों ओर ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं होंगी जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उस आने वाले समय के लिए हम अपने मन को आज ही तैयार करें, इतनी इसमें दृढ़ता भरें, इतनी पवित्रता भरें, इतनी पॉजिटिविटी भरें, इतना इसको एकाग्र बनाएं, इतना इसमें मनोबल भरें, शक्तिशाली बनाएं कि ये सारा दिन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, शक्तिशाली रहे, पॉजिटिव रहे। और ऐसा नहीं कि केवल जानी पहचानी घटनाओं में अचानक कोई घटना आ जाती है, उस समय अगर हम स्थिर रहे तो हमको हम अपने आप को ये सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि हाँ हम हमारा पुरुषार्थ ठीक है। कई बार हम कहते हैं जी इस बात का तो पता ही नहीं था ना, ऐसा भी हो जाएगा, इसलिए तो मन डामाडोल हो गया। लेकिन कहते हैं अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट करके उसकी भी तैयारी करो। जो जीनियस लोग होते हैं वो अपनी सुबह को क्या सोच के शुरू करते हैं, कि कार्य अच्छे से अच्छा करो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। करना तो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन अगर कुछ ऐसा घट गया तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ऐसी हमारे मन की तैयारी हो। हम देखते हैं बाबा जितनी भी मुरली चलाते हैं, हर मुरली का केंद्र हमारा मन होता है। इतना बाबा ने मन के लिए पढ़ाया है, इस मन को इतना बाबा ट्रेंड कर देना चाहता है कि ये हमारी आज्ञा के विरुद्ध ना जाए। प्रतिकूल ना जाए, और जहां हम इसे लगाना चाहें हमारी आज्ञा अनुसार वहीं लग जाए, उतनी ही देर लग जाए, उसी स्थिति में लग जाए। हमारी सारी पढ़ाई का केंद्र बिंदु यही है। तो हम फिर कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मन लगता नहीं है। बाबा परम पवित्र हैं, और उस परम पवित्र तक परम पवित्र मन ही पहुंचेगा। जैसे कहते हैं ना, चुंबक उस सुई को खींचती है जिसपे जंक ना हो, तो बाबा भी खींचेगा। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको ऐसे आएगा कि कुछ बचा ही नहीं, याद किसको करें, कोई बात ही नहीं है, मन को लगाएं किसमें, कुछ है ही नहीं अंदर, जाएं किधर, ये स्थिति बन जाएगी। जब देखते हैं बाबा ही सामने दिखता है और कुछ है ही नहीं जहां मन जाए, ना कोई संबंध याद है, ना कोई पास्ट की घटना याद आ रही है, अरे बड़ा सरल हो गया, ऐसे लगता है बाबा सामने ही, हर घड़ी हर पल, सोते खाते जगते सामने है बाबा। ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं दुनिया में, बाबा ही। नेचुरल स्मृति बन जाएगी, नेचुरल बाबा से लिंक जुट जाएगा, वही तो हम सब की इच्छा है। तो ऐसी तैयारी हमको करनी है, ऐसा सबता नेचुरल योगी बनना है, ऐसा बाबा के प्यार में एक रस रहना है। यही हमारी पढ़ाई का अंतिम पाठ है। जो प्यार में डूबा हुआ होगा उसे ना परिस्थिति आएगी ना माया आएगी। ये प्यार ही कवच है, ये बाबा की नेचुरल स्मृति ही कवच है, जिसके अंदर कोई परिस्थिति और बात प्रवेश ही नहीं करेगी। ऑप्शन
तुम्हें।